الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم عن اللغو معرضون. کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی شروع کی آیتوں میں فلاح یاب، کامیاب اور ایسے اہل ایمان جن کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہوگی، ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. چنانچہ پہلا وصف جو بیان کیا گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. دوسرا وصف، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ لغو کا ایک مفہوم بیہودہ سلوک، بیہودہ معاملہ اگر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں ایسے سلوک کرنے والے کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ نہیں کرتے. آج اس کا دوسرا مطلب لفظ لغو کا جو حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے، لغو یعنی بے فائدہ، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. لایعنی سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ بتلائی کہ وہ اپنے آپ کو لایعنی سے دور رکھے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. تو قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ کسی کی بھی فلاح اور دنیاوی اور اخروی خوشحالی اور کامیابی موقوف جن چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لایعنی سے بچائے. اور حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لایعنی چیزوں سے دور رکھے. یہ لایعنی کیا ہے؟ لایعنی ایسے کام، ایسا کلام، ایسی باتیں جو یا ایسے کام جن کا کوئی نہ تو آخرت کا فائدہ ہو نہ دنیا کا. انسان چونکہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس لیے بہت سے وہ کام جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے پیش نظر اس کو انجام دینے پڑتے ہیں. ایک آدمی تجارت کرتا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا ہے، مال لے کر کے آواز لگا رہا ہے، لے لو میرا یہ مال. अभी आवाज जो लगा रहा है अपनी तिजारत की ज़रूरत के पेश नज़र, एक मकसद है, वो शरीयत उसको इससे मना नहीं करती। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह मरकज़हु हज़रत हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि एक कुंजड़ा यानी सब्जी बेचने वाला अगर दिन में 100 मरतबा यह कहे कि ले लो सब्जी, कोई नुकसान नहीं होगा उससे, उसको रूहानी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कोई आदमी जिसका इस पेशे से कोई ताल्लुक नहीं है और जिसको इसकी ज़रूरत नहीं, वो एक मरतबा भी बोलेगा तो उसकी वजह से कल्बी और रूहानी तौर पर उसको जो नुकसान पहुंचता है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये बेकार कलाम और बेकार काम हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवरल्लाह मरकदहु के साथ जो पहला सफ़र हुआ था जनूबी अफ्रीका का, तो ये भी ज़रूरी है बतला रहा हूँ। एक साहब के घर हजरत तशरीफ ले गए, आपने देखा होगा वहाँ घर के अंदर जब दाखिल हुए तो वो जीना था, जीने के दोनों तरफ दो बड़े जो है पॉट रखे हुए थे। हजरत ने साहिब खाना से पूछा ये क्या है, तो कहा ये पॉट है। तो क्या काम है इसका, इसका क्या फ़ायदा, कहा ऐसी ज़रा नुमाइश के लिए देखने के लिए। तो हमारे हजरत ने एक बड़ी अजीब बात फरमाई कि अब तक तो हम लायानी की दो किस्मों से वाकिफ थे, बात और काम, यानी ऐसी बात ऐसा कलाम जिसका कोई फ़ायदा न दुनिया में हो ना आखिरत में, ऐसा काम जिसका न कोई फ़ायदा दुनिया में हो ना आखिरत में। अब लायानी चीज़ों से भी आज वाकिफियत हुई, आज हमारे घरों में देख लीजिए ना आदमी, यानी अच्छे अच्छे दीनदार घरों में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें वो हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि हदीस पाक में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं कि आदमी के पास एक बिस्तर अपना, एक बीवी का और तीसरा मेहमान का और चौथा शैतान का, हदीस के अंदर है ये मज़मून। गोया एक जायद बिस्तर तक की शरीयत इजाज़त देती नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ों की कहाँ होगी। बहरहाल मैं ये अर्ज़ करने जा रहा था कि हर वो चीज़ या हर वो बात या हर वो काम तीन जिनका न तो दुनिया का कोई फ़ायदा हो ना आखिरत का, उसको आप लायानी से ताबीर कर सकते हैं। और क़ुरान ये कहता है कि जब तक कोई आदमी अपने आप को अहले ईमान में से कोई भी शख्स जब तक कि अपने आप को इनसे दूर रखने का एहतमाम नहीं करेगा वहाँ तक वो फलाहयाब और कामयाब नहीं होगा। आज ये क्यों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़िंदगी जो अता फरमाई है बड़ी कीमती है, उसका एक एक लम्हा, एक एक मिनट और एक एक सेकंड इतना कीमती है कि हम और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस बात का पाबंद किया गया है कि अल्लाह की दी हुई इस ज़िंदगी के इन कीमती अवकात को ऐसे कामों में हम इस्तेमाल करें जिनमें हमारा आखिरत का फ़ायदा हो या दुनिया का, जिनमें न आखिरत का न दुनिया का फ़ायदा, ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। यही अल्लाह तबरक तआला की इस दी हुई कीमती ज़िंदगी की कदर है। एक एक सांस बड़ी कीमती है। हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवरल्लाह मरकदऊ एक शेर पढ़ा करते थे, तेरा हर सांस नखले मूसवी है, ये मद्दो जज़्र जवाहर की लड़ी है। ये जो सांस ऊपर जाती है नीचे आती है, गोया ये जवाहरात हैं। एक 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 सांस जो है वो मोती से और हीरे से ज़्यादा कीमती है। आदमी उसके ज़रिए से जो हासिल कर सकता है वो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमारे हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब नवरल्लाह मरकदहु को सुना मजालिस के अंदर बार बार, अक्सर हज़रत ये शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ा करते थे, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। ये घंटे वाली जो घड़ी होती है ना, जब उसका घंटा वो टिकोरा जिसको गुजराती में कहते हैं बजता है, तो ये बजने वाला घंटा और टिकोरा हमें ये खबर देता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजर गया। اور حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے لے کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہوئے فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو آخر میں آدمی اگر یہ بجنے والے گھنٹوں پر غور کرے تو گویا وہ کہہ رہا ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی, گویا وہ یوں کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ایسی مبہم آوازیں جو ہوتی ہیں آدمی اپنے من میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو فٹ کر سکتا ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اوقات جو ہمیں عطا فرمائے ہیں بڑے قیمتی ہیں. اس کا ایک ایک لمحہ جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی کتاب الزہد والرقائق میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں انی ادرکت اقواما کان احدہم اشح علی عمرہ منہ علی دراہمہ ودنانیرہ. میں نے ایسے لوگوں کو پایا, ظاہر ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی تھے, انہوں صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنی زندگی کے اوقات کو استعمال کرنے کے معاملے میں جو اتنے زیادہ اس سے زیادہ بخیل تھے جتنا وہ اپنے دراہیم اور دنانیر کے استعمال کے معاملے میں ہوتے ہیں. ایک آدمی اپنے پیسوں کو استعمال کرنے کے معاملے میں جس طرح جو ہے بخل سے کام لیتا ہے, وہ حضرات اپنی زندگی کے اوقات کو استعمال کرنے کے معاملے میں اس سے زیادہ احتیاط اور بخل سے کام لیا کرتے تھے. اس لیے کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی سرمایہ. حیات کا انفاس تعد فکلما مزا منہا نفس انتقصت منہ جزا. یہ تمہاری زندگی کیا ہے؟ چند سانسوں کا مجموعہ ہے, اور جب ایک سانس گزری تو یا زندگی کا ایک حصہ ختم ہوا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت شیخ النی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اور اکثر ہمارے مدارس عربیہ کی ابو داود کی سند جو ہے انہی کے واسطے سے حضرت شیخ النی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی. وہ مادرزاد ولی بڑے صاحب کشف, تو چونکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یاسین صاحب ان کے حضرت میاں صاحب کے استاد تھے, تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد زیادہ ہونے کی نسبت سے میاں صاحب میرے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے. ویسے حضرت مفتی صاحب ان کے شاگرد بھی ہیں حضرت میاں صاحب, تو ان کی خدمت میں آنا جانا ہوتا رہتا تھا. کہ ایک مرتبہ حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا مفتی جی آج تو عربی میں بات کریں گے. عربی میں, اب عربی میں ویسے ہم جتنے بھی اہل علم ہیں جانتے ہیں ہمارا مدرسوں کے اندر سارا معاملہ عربی زبان سے پڑھتا ہے, لیکن زبان کسی زبان سے واقفیت الگ چیز ہے اور اس کے بولنے کی مشق الگ چیز ہے. جب تک کہ بولنے کی کما حق کو مشق نہ کی جائے وہاں تک بڑے سے بڑا عالم بھی اس کو بول نہیں پاتا. تو بہرحال حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پوری مجلس میں بہت کم گفتگو کرنے کی نوبت آئی. میں نے عرض کیا حضرت آج آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ کہا مولوی صاحب ہمارا حال ایسا ہے جیسا ایک آدمی اپنے گھر سے سفر کے اندر نکلا, بہت سارے پیسے لے کر کے نکلا, اور ان پیسوں کو اور اس مال کو یوں جوں توں بیکار چیزوں میں خرچ کر دیا, اور ابھی منزل مقصود بہت دور ہے. اس نے دیکھا اپنا توشہ کے چند روپیے رہ گئے ہیں, تب وہ کیسا اس کو بچا بچا کر کے اور احتیاط سے استعمال کرے گا. ہمارا بھی حال یہی ہے کہ زندگی کے ان قیمتی اوقات کو ہم نے ضائع کر دیا. کہا میں نے عربی میں اس لیے کہا کہ عربی زبان پر بولنے کی پریکٹس اور مشق نہ تم کو ہے نہ مجھ کو ہے, نتیجہ یہ ہوگا کہ بلا ضرورت بات نہ آپ بولیں گے نہ میں بولوں گا. ایک تدبیر ہمارے اکابر جو ہیں گویا کیسی کیسی تدبیریں اختیار کرتے تھے اپنے آپ کو ان لغو چیزوں سے بچانے کے لیے. مشکات شریف میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اپنی زبان کو کھینچ کر مروڑ رہے ہیں, और फरमा रहे हैं आदल लदी और अदनियल मवारिद, इसी ने मुझे मुसीबतों में डाला है। वहीं ये भी है कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला ने अपने मुंह में कंकर रखते थे ताकि बिला जरूरत बोलने की नौबत। आप अंदाजा लगाएं कौन हजरत अबू बकर, जिनका मकाम हजरत अंबिया के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल शख्सियत, वो अपनी जबान की हिफाजत का इतना एहतमाम कर रहे हैं। इस लॉकिंग सिस्टम की जरूरत तो हमको थी, हमें चाहिए था कि हम ऐसी तदबीरें इख्तियार करते कि ऐसी फजूल बात हमारी जबान से निकालने की नौबत ना आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा और कोई माबूद नहीं, तब तवील और लंबी कैद की कोई चीज अगर हकदार है तो वो जबान है। और हजरत ताउस जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला नुमा के शागिर्द हैं और मुफस्सिरीन में उनका शुमार होता है, फरमाते हैं ये मेरी जबान दरिंदा है, मुझे ये डर है कि मैं उसको खुला छोड़ दूंगा तो वो मुझे फाड़ खाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला नुमा के शागिर्द थे रबी इब्न खैसम, बड़े जोहद और जोहद हमें तमाम शागिर्दों पर फाइक थे। हजरत इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला नुमा की मजलिस में जब आते थे तो उनको अपने पास बिठा कर बुला करके बिठाते थे और फरमाया करते थे लव रहा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाहब्बा का, कि तुमको अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो ज़रूर तुमसे मोहब्बत का मामला फरमाते। 20 साल तक दुनिया की कोई बात उन्होंने नहीं कही और उनका मामूल ये था कि सुबह को जब बैठते थे तो दवात कलम और कागज़ लेकर के बैठते थे, कोई बात अगर ज़बान से निकाली तो उसको लिख लिया और शाम को अपना मुहासबा करते थे कि ये बात जो मैं बोला था इसके बोलने की जरूरत थी भी या नहीं। ये हजरात गोया अपनी जिंदगी के औकात के मामले में इतने ज्यादा मोहताज, कोई फजूल बात अगर निकल गई गैर इरादी तौर पर गैर इख्तियारी तौर पर तो उस पर अपने लिए बड़ी बड़ी सजाएं तजवीज करते थे। अहयाउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है हस्सान इब्न अबी सिनान एक बुजुर्ग हैं, गुजर रहे थे, एक मकान देखा, देख करके पूछने ये कब बना, बस पूछने को तो पूछ लिया, मान उनको यह एहसास हुआ कि मैंने ये फजूल सवाल किया तो अपने दिल से कहते हैं कि तूने ये फजूल सवाल क्यों किया, अब मैं तुझे उसकी सजा ये देता हूं कि एक साल तक रोजा रखूंगा, एक साल तक रोजा रखूंगा। हजरत मालिक इब्न ज़ैगम कहते हैं कि हजरत रिबाह कैसी बुजुर्ग हैं एक मरतबा हमारे मकान पर तशरीफ लाए, असर के बाद हमारे वालिद के मुतालिक पूछा, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, हमने कहा कि वो तो सो रहे हैं। वो कहने लगे ये कौन सा सोने का वक्त है असर के बाद, खैर ये फरमा कर वो तो लौट गए, क्योंकि वो बड़े आदमी थे तो घर वालों ने उनके पीछे गुलाम को दौड़ाया कि अगर आप फरमाएं तो उनको हम जगा दें। वो गुलाम बहुत देर के बाद आया, कहा कि मैं तो उनके साथ साथ चलता रहा और वो अपने नफ्स को खिताब करते हुए कहते हैं तुझे क्या जरूरत थी कि तूने ऐसा कहा कि ये क्या सोने का वक्त है, तुझे मालूम है कि किस आदमी के लिए सोने की कब जरूरत है, तूने ऐसी फजूल बात क्यों की, एक साल तक मैं जमीन पर लेटूंगा नहीं। कहने का हासिल यह है कि ऐसी लघवियात से हजरत दाऊद ताही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक आदमी आया बैठा, उसने कमरे की छत के ऊपर नजर की कि फलानी कड़ी वो जो लकड़ी होती है कमरों में लगाई जाती है वड़ी वड़ी जिसको गुजराती में कहते हैं तो वो टूटी हुई है। तो हजरत दाऊद ताही रहमतुल्लाह ने जवाब में 20 साल से मैंने नजर नहीं की, फजूल नजर से भी अपने आप को वो बचाते थे, फजूल कलाम तो अपनी जगह पर है। गोया अल्लाह ताला ने ये जो सलाहियतें अता फरमाई हैं, जिंदगी के जो कीमती औकात अता फरमाए हैं, इन औकात को वसूल करना तो उन हजरात ही ने सीखा था और उनके हालात जब पढ़ते हैं तो हैरत होती है। अली जुर्जानी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हजरत शेख ने फजाइल के अंदर लिखा है कि वो बजाय रोटी के सत्तू इस्तेमाल करते थे, सत्तू फांक लेते थे, रोटी नहीं खाते थे। किसी ने पूछा आप रोटी क्यों नहीं खाते, क्या रोटी खाने में उसको तोड़ना चबाना वक्त होता है, मैंने हिसाब किया रोटी खाने का और ये सत्तू फांकने का तो 70 मरतबा मुझे सुभान अल्लाह पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो मैंने रोटी खाना छोड़ दिया और 40 साल से सत्तू फांकने पर इक्तफा कर रहे हैं। 40 साल से अंदाजा लगाओ। हमको तो 2-3 दिन तक मुसलसल ज़र्दा और बिरयानी मिले ना तो हमारी तबीयतें औब जाती हैं। आखिरत का फ़ायदा हासिल करने के लिए 40 साल से खाली सत्तू पर इक्तफा कर रहे थे। यही हजरत दाऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक लिखा है कि रोटी को चबा कर खाने के बजाय पानी में भिगो देते थे और नरम हो जाती थी तो खा लेते थे, क्योंकि मकसद जो है ग़िज़ाइयत वो तो उस नरम रोटी से भी हासिल होगा। पेट में जब जाएगी तो वो चबा कर खा कर लज्जत लेकर खा कर जो हम मकसद हासिल करते हैं अपने लिए ग़िज़ाइयत का, वो उससे भी हासिल होता है। तो उनका यही मामूल था। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहा चबा कर खाने में और ये भिगो कर हलक से नीचे उतारने का मैंने हिसाब में लगाया तो 50 आयतें कुरान पाक की मैं तिलावत कर लेता हूँ। अब हालांकि ये भिगोई हुई रोटी कभी आपने देखा होगा ना, प्लेट में किसी जगह कहीं भूल से पानी का कोई कतरा लगा हुआ हो और उसी में आपने रोटियां रखी हो और उन रोटियों को जब खा रहे हैं और खाने के दौरान वो रोटी का हिस्सा जो पानी के उस कतरे से लगा हुआ था जब हमारे मुंह में पहुंचता है तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हैं, लज्जत न हासिल होने की वजह से। और ये जो है पूरी जिंदगी अपने आप को उस लज्जत से महरूम किए हुए थे। हकीकत तो यह है कि जिंदगी के औकात की कीमत उन्होंने हासिल की। अल्लाह तबारक तआला ने यह कीमती जिंदगी अता फरमाई है। हकीकत तो यह है कि हमें उसकी कदर करके ऐसे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए मुफीद है। लग व बेकार चीजें आजकल क्या हो गया, मजलिसबाजी, फजूल बहसें, एक आम मिजाज हो गया मुसलमानों के मुआशरे का। जहां देखोगे वहां मस्जिद के बाहर ओटों के ऊपर, घरों में, अपने जो है सिटिंग रूम में और जगह जगह बैठे हुए लोग इसी तरह की फजूल बहसों के अंदर अपना औकात को जाया करते हैं। ऐसे ऐसे अजीब अजीब सवाल। एक मरतबा हमारे दारिफ्ता में सवाल आया कि ये वो जो आपने देखा होगा इमाम साहब जुमा के रोज जो आसा पकड़ते हैं, तो कई आसा जो पकड़ा जाता है वो मोटा वाला हिस्सा हाथ में रखें या वो पतले वाला रखें। बाद में तहकीक से पता चला कि इस बात पर बाकायदा झगड़ा हो गया गांव के अंदर, दो पार्टियां हो गई। हमारा ये हाल है, फजूल बहसों में अपने आप को इसके अंदर जाया करते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज में एक वाकया है, बल्ख के दो तालिब इल्म हजरत मियाँ हजरत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैत की गरज से हाजिर हुई। जिस मस्जिद में हजरत का क़याम था वहाँ वो नमाज के वक्त में पहुँचे, वजू कर रहे हैं, चूँकि हजरत को वो पहचानते नहीं थे। अब वजू के लिए हौज पर बैठे, अब एक कह रहा है कि ये हौज हमारे बल्ख के हौज से बड़ा है, दूसरा कहता है कि नहीं वो बल्ख वाला हौज बड़ा है। ये बहस चलती रही। हजरत मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे लेकिन चूँकि वो लोग पहचानते नहीं थे इसलिए उनको पता नहीं चला, सारी बातें हजरत सुन रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद जब हजरत अपनी मजलिस में तशरीफ ले गए और ये आपकी खिदमत में हाजिर हुए, पूछा क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, बतलाया कि हम तो बल्ख से आए हैं आपकी खिदमत में जो है ये अबैद की गरज से हाजिर हुए हैं। तो वो क्या हुआ, वो बल्ख का हौज बड़ा है या ये हौज बड़ा है, उसका क्या फैसला हुआ? जाओ पहले बल्ख जाओ और बल्ख जा कर के नापो और इसको भी नापो और उसके बाद फैसला करके बताओ, फिर मैं बैत करूँगा। तुम्हारी इस बहस से मालूम हुआ कि तुम में दो जो हैं नुक्स हैं। एक तो ये है कि तुम फजूल चीज़ों में अपने औकात को ज़ाया करते हो और ये मोमिन की शान नहीं है। कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वे मोरिन। और दूसरा ये है कि तुम्हारे मिजाज के अंदर तहकीक नहीं है, न तुमने नापा, न इसने नापा, न उसने नापा। यहाँ का हौज कितना बड़ा हो, तो किसी ने भी नापे बगैर एक ने दावा किया कि यहाँ का हौज बड़ा है और दूसरे ने दावा किया कि वहाँ का हौज बड़ा है। तो देखिए हमारे अकाबिर के यहाँ इन चीज़ों पर फौरन गिरफ्त होती थी। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और आकर पूछता है, मेरे मकान के सामने एक नहर है, मैं रोज़ाना उसमें गुसल करता हूँ, तो गुसल के वक्त मैं अपना मुंह किस तरफ करूँ, मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ? फजूल सवाल था। तो हजरत इमाम साहब ने फरमाया जिधर तुमने कपड़े रखे हैं ना वहाँ मुंह कर, ताकि कोई कपड़े लेके भाग न जाए। कहने का हासिल यह है कि लोगों के तबाहे के अंदर ऐसी फजूल सवालात, अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी के इन कीमती अवकात को ऐसी चीज़ों में ज़ाया करना, ये वाकया यह है कि जवाहरात को हम जो है लुटा रहे हैं, कंकर और पत्थर खरीद रहे हैं, ये एक मोमिन की शान नहीं है। अपने आप को इससे बचाएं। ये तो वक्त जो है ना ऐसा अजीब कीमती सरमाया है कि उससे आदमी बड़ी से बड़ी दौलत हासिल कर सकता है। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह जो है वो यमलाउल मीज़ान, जिस तराजू में आमाल नामे तोड़े जाएंगे सवाब से भर देता है उस तराजू को, और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह यमलान मा बैन समावात वल अर्द, कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई आदमी बोल दे तो ज़मीन और आसमान के दरमियान की पूरी फिजा सवाब से भर जाती। लेकिन कभी हमें उतना सुनने के बाद भी शौक होता, अभी कह दें कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, ये पूरी मस्जिद नोटों से भर जाएगी, सब तस्बीह लेके बैठ जाएंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि ज़मीन और आसमान के दरमियान का हिस्सा सवाब से भर जाता है, हमें शौक और रग़बत पैदा नहीं। बहरहाल मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये इतना कीमती ये सरमाया, ये दरअसल ये वक्त जो है ना वो कच्चा माल है, रो मटेरियल। क्या रो मटेरियल जो होता है उसको आप जिस मकसद में इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से उसकी कीमत लगेगी। लोहे का एक टुकड़ा है, अगर उसको साइकिल के किसी पार्ट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो उसकी कीमत साइकिल की कीमत के हिसाब से होगी। साइकिल 500 अगर इसकी है, पाउंड की है, तो उसी हिसाब से उसकी कीमत लगेगी। उसी लोहे के टुकड़े को अगर बाइक मोटर बाइक का पार्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने जिस काम में इस्तेमाल किया उसी को कार के पार्ट्स के तौर पर आपने कहीं लगाया तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी, उसी को आप हवाई जहाज के पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल। तो ये वक्त जो है ना वो तो रॉ मटेरियल है, आप जहां लगाएंगे उसके हिसाब से उसकी कीमत लगेगी। अब ये आप पर मौकूफ है कि आप उसकी कितनी कीमत वसूल करते हैं। और मैं तो कहता हूं खाली वक्त नहीं, उस वक्त के अंदर जो हम अपने दूसरी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त में जबान से बोलेंगे, उस वक्त में अपनी आँख को इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को देखने के लिए अपने काम, तो अल्लाह ताला ने ये जो कुवा अता फरमाए हैं और उन कुवा से जो हम काम लेते हैं वो भी सब रॉ मटेरियल ही है। वो भी वक्त भी रॉ मटेरियल है, ये भी रॉ मटेरियल है। अब हमारी सवाबदीद पर है और हमारी सूझबूझ और हमारी होशियारी के ऊपर है कि हम कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाते हैं। उसी को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नेमतान मगबूनुन फीमा कसीरु मिनन नास अस्सहत वल फराग। अल्लाह की दो नेमतें ऐसी हैं कि जिनसे के मामले में लोग धोखे में या घाटे में, दो मतलब हो सकते हैं। लफ्ज़ गबन अरबी जबान के अंदर दो माना के लिए इस्तेमाल होता है, धोखे के लिए भी और घाटे के लिए भी। धोखे में माना है कि भाई शैतान और नफ्स आदमी को जो है गफलत में रखते हैं, अभी क्या जल्दी है, अभी तो जिंदगी पड़ी है, इस तरह जाया करवाता है। और घाटे का मतलब यह है कि इससे जितना फायदा उठाना चाहिए आदमी उठाता नहीं। मैं मिसाल दिया करता हूं, एक आदमी अपनी जिंदगी के औकात को दुनिया कमाने के लिए लगाता है, बहुत कुछ पढ़ा लिखा और किसी कंपनी का मैनेजर बन गया और कंपनी ने एक घंटे के 1,000 पाउंड उसकी तनख्वाह मुकर्रर की, 8 घंटे 8,000 पाउंड, और महीने की तनख्वाह उसी हिसाब से, साल की तनख्वाह उसी हिसाब से। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो अपनी ज़िंदगी जब रिटायर होगा 50 साल 55 साल 60 साल पर अपनी ज़िंदगी में जितना कमाएगा वो सारी कमाई उसके ज़रिए से आपके इस शहर में जो सबसे ज़्यादा पोश एरिया है, उस पोश एरिया के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग है या दो बड़ी बिल्डिंग हैं, ये आदमी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई से क्या उसको खरीद सकता है? नहीं, इसलिए वो बहुत कीमती है। आजकल तो भाव बढ़, चलिए दो खरीदी तीन खरीदी, पूरा एक मोहल्ला खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता। लेकिन आखिरत के लिए अगर हम अपनी नौकात को इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम कितनी बड़ी कीमत हासिल करते हैं, अंदाज़ा लगाओ। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई, नमाज के दौरान आपने कुछ आगे बढ़कर हाथ आगे बढ़ाकर कुछ लेना चाहा, कुछ पीछे हटे जैसे अपने आप को किसी चीज़ से बचा रहे हैं। बहरहाल नमाज के बाद हजरत साहबा ने पूछा कि आज तो कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आम तौर पर आपसे नज़र नहीं आती। उदू सलाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का नज़ारा कराया। जन्नत को जब मैंने देखा तो मैंने चाहा कि उसका एक खोशा तोड़ दूँ। बुखारी की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं अगर मैं तोड़ लेता तो तुम लोग कयामत तक खाते रहते तो भी वो ख़त्म न हो, क्योंकि जन्नत की चीज़ है ना गैर मुतनाही। एक दाना तोड़ा तो ऑटोमेटिक उसकी जगह पर दूसरा दाना पैदा हो जाए। तो जन्नत के खोशे का यह हाल है कि ये पूरी उम्मत कयामत तक खाती रहेगी तो भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा, तो फिर जन्नत के एक दरख्त का क्या हाल होगा। और जन्नत का वो दरख्त हम कितनी आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेराज में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, हजरत इब्राहिम अल्लाह नबीना वाली सलात व सलाम से मुलाकात हुई, हजरत ने फरमाया अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, और यूँ कहना कि जन्नत तो चटियल मैदान है, उसके दरख्त हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये जितने कलिमात कहेगा उतने जन्नत में दरख्त, घड़ी लेकर बैठ जाओ एक मिनट में इत्मीनान के साथ सुभान अल्लाह आप कहेंगे तो 50-60 मरतबा तो कहीं गया ही, और अगर जल्दी पढ़ेंगे तो 100 मरतबा भी सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं। हम एक मिनट में जन्नत के 100 दरख्त, दुनिया में ऐसे 100 दरख्त अगर आप यहाँ हासिल करना चाहें तो उसके लिए आपको कितना सरमाया लगाना पड़ेगा, कैसी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी उसके लिए, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और कितनी मुद्दत के बाद वो दरख्त आपको हासिल होंगे। और यहाँ अल्लाह तबरक ताला ने जो है एक मिनट के अंदर आपको ये इतना बड़ा इतनी बड़ी दौलत दे दी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी के जो अवकात अता फरमाए कितने कीमती हैं। इसी से हमारे असलाब की सूझबूझ, उनकी होशियारी का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपने अवकात को कहाँ लगाते थे, आखिरत की नेमतों को हासिल करने के लिए। बहरहाल मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की कीमती अवकात अता फरमाए हैं, उनका सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ऐसे लघवियात से अपना एक मेरा अपना तजुर्बा आपको अर्ज़ करता हूँ। सुबह को फजर के वक्त जब आप दुआ करें, और दुआ में जहाँ जो दिन के शुरू की दुआएं पढ़ते हैं वो पढ़ने के साथ ये भी दुआ करें अल्लाह ये दिन मेरा इस तरह गुजरे कि उसका कोई लम्हा लायानी में इस्तेमाल ना हो। अगर दिल से आप ये दुआ करेंगे, मेरा अपना तजर्बा है कि अल्लाह ताला ज़्यादातर आपकी हिफाजत फरमाएंगे लायानी से। तो बहरहाल ये लायानी की मशगूली जो है ना अल्लाह की नाराज़गी की भी अलामत है। शेख अबुल क़ासिम जो इमाम अबू सौर के शागिर्द और हज़रत सिर्री सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह के भांजे होते हैं, वो फरमाते हैं कि अलामत एराज़िल्लाह यानी अब्द अन युशग़िलहु फ़ीमा ला यानी, अल्लाह ताला के अपने किसी बंदे से नाराज़ और गोया नाखुश होने की अलामत यह है कि वो उसको ऐसे कामों में लगाए जिसमें कोई फ़ायदा ना हो। हमारी ज़िंदगी के अवकात अगर इन कामों में लग रहे हैं तो हमें फैसला करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी के अवकात को कारामद चीज़ों में लगाने की ज़रूरत। हमारे अकाबिर अभी माजी करीब के जो अकाबिर असलाब जो हैं मुतकद्दिमीन उनकी तो बात छोड़िए, माजी करीब के जो अकाबिर हैं हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत शेखुल हदीस माना ज़करिया साहब और ये सारे उनके हालात पढ़िए, एक मिनट को भी जो है वो बेकार काम में लगाने को गवारा नहीं करते थे। हमारे सामने नमूने मौजूद हैं, ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के अवकात को इन कारामत कामों में लगा कर जो है अल्लाह ताला ने जो कीमती सरमाया हासिल अता फरमाया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हासिल करें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाएँ। दुआ कर लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد कमा तुहिब्बो व तरदा बेअदद मा तुहिब्बो व तरदा। ऐ अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, तेरी मर्जियात पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चला कर तेरी नामर्ज़ियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने और अपनाने की तो हमें तौफीक व सआदत अता फरमा। ऐ अल्लाह एक लम्हे के लिए भी तेरी मासियत और तुझसे गफलत में मुब्तला होने से हमारी पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। और यहाँ मौजूद मजलिस में शरीक तेरे तमाम बंदों और बंदियों की जायज़ और नेक मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته।